बाहर जहां अभी जो मरकजी अजादारों का जुलूस था नमाज जनाजा नासरबाग में अदा करने के बाद आज अहले तशी बरादरी के रहनुमाओं समेत हजारों कारकुन यहां पर जहां कल रात गुज़िश्ता रोज हजरत अली करम अल्लाह वजह के दोमे शहादत के शब जो अजादारा जुलूस मनाया जा रहा था उसका इनेकाद यहां किया गया था और यहां पर दहशतगर्दी के होने वाले 3 बम धमाकों के बाद आज सुबह जब नमाज जनाजा नासरबाग अदा की गई उसके बाद इन तीनों जगहों पर अहले तशी बरादरी की तरफ से खराज तहसीन 14 को पेश करने के लिए यहां पर खुसूसी अजादारों का एक जुलूस यहां पर आया गया और यहां लाया गया। यहां पर फिर इख्तितामी दुआ की गई और इस वक्त आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि जो अजादारों का मरकजी जुलूस था यहां पर मौजूद करबला गामिशा के बाहर उसका वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और यहां पर जो सैयद अलामा जवाद साहब नकवी साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं जिन्होंने इख्तितामी दुआ कराई है। हम इनसे मालूम करेंगे कि जो दहशत गर्दों की तरफ से गुज़िश्ता शब हजरत अली करम अल्लाह वजहों के योम शहादत पर दहशत गर्दी की जो मजमून कार्रवाई की गई इसके क्या मकासद थे और ये किस तरह से अमल में आई और इसको अहले तशी बरादरी किस तरह से लेती है। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, सर मुझे ये बताएगा जो गुज़िश्ता शब दहशत गर्दी की जो वारदात हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं और अहले तशी बरादरी जो है वो इसमें किस तरह से पैगाम देगी कि जो अमन अमान की कैफियत ख़राब हो रही है पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं आपकी ये ताबीर जो है शिया बरादरी की मैं इसकी तस्दीक करना चाहूँगा कि बरादरी शिया बरादरी जब कहा जाता है या बरादरी का लफ्ज़ अकलियत के लिए इस्तेमाल होता है, हिंदू बरादरी, मसीही बरादरी, सिख बरादरी, और आप अगर इस सेंस में बरादरी का लफ्ज़ शिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं तस्दीक करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी शिया और शिया मुसलमान जो इस वाक़े में मुतासर हुए हैं 21 रमज़ान और मुबारक के में आज़ादारी अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जुलूस के अंदर 3 बम ब्लास्ट हुए हैं दहशतगर्दों की तरफ से और जिसके अंदर 28 मोमिनीन हमारे शहीद हुए हैं और 200 से ज़्यादा 250 के करीब तकरीबन मजरूह हैं शदीद और अस्पतालों में हैं और बाद की हालत बहुत तशवीशनाक है। आज इनका नमाज जनाजा शहदा का बाज का हुआ, बाज को जो अपने अपने आबाई मकाम पर ले गए थे नासिरबाग में बहुत सारे शहदा का नमाज जनाजा हुआ, नमाज जनाजा के बाद तशरीह जनाजा हुई और उसके बाद जुलूस मरकजी जुलूस एहतजाजी जुलूस वहाँ से नासिरबाग से करबला गामिशा तक आया जो अभी इख्तिताम पजीर हुआ है और यहाँ पर उसके इख्तितामी मरासिम अदा हुए हैं। आपने जो सवाल किया है कि दहशतगर्दी का ये वाकया जो हुआ इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, पाकिस्तान में शिया बरादरी का कत्लेआम 20 साल से हो रहा है, यानी 20 साल से पाकिस्तान के अंदर ये शजरा खबीसा और मलऊना इसको गाड़ा गया, इसके रूट्स बनाए गए और आज तक शिया बरादरी उसका खुमियाजा भुगत रही है जिसके अंदर पाकिस्तानी हुक्मरान इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी, पाकिस्तानी सियासतदान इन्वॉल्व थे और मुसलसल ये चला आता रहा है। कई सालों तक फकत शिया कत्लेआम होते रहे एकतरफा तौर पर, लेकिन जब ये नहीं रोका गया ये सिलसिला तो ये शिया से बढ़कर दूसरे मुसलमानों तक भी जा पहुंचा और दूसरी कम्युनिटी तक भी जा पहुंचा है और आज हम ये देखते हैं कि गामिशा से चंद कदम दूर ही दाता दरबार है और कुछ अरसा पहले ही यहाँ पर चंद माह काबिल यहाँ पर कार्रवाई हुई और यही इसी तरह की दहशतगर्दी हुई और वहाँ पर भी मुसलमान शहीद हुए और आज गामिशा में चंद कदम इधर फर्क नहीं पड़ता, कोई सुन्नी शहीद हो या शिया शहीद हो, मुसलमान शहीद हुआ है, इंसान शहीद हुआ है और एक जैसा अलमिया है। हम सब के ऊपर एहतजाज करते हैं और सब के शहदा के लिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। एहतजाज से मुराद ये नहीं कि हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि ये हुकूमत कुछ करे, क्योंकि ये हुकूमत खुद दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है, दहशतगर्दों को पाल रही है, उनको अपने परों के नीचे इसने पनाह दी हुई है और इस हुकूमत के वजीर राना सनाउल्लाह जैसे वो जाते हैं, जाकर उनके दहशतगर्दों के ग्रुप्स में शिरकत करते हैं और उनकी अलनी हिमायत करते हैं। जाहिर है सनाउल्लाह एक सेटअप का हिस्सा है, सनाउल्लाह एक नेटवर्क का हिस्सा है, तन्हा एक फर्द का नाम नहीं है, सनाउल्लाह से बड़े भी लोग मौजूद हैं। अगर उनकी रजा इसमें शामिल ना हो सना कभी भी दहशतगर्दों के साथ नहीं मिल सकता जाकर, और वो जो उनके बड़े हैं उन्हें भी हमें पता है कि वो गैर मुल्की बाज حکومتوں اور امبیسیوں سے وابستہ ہیں اور ان کے روٹس وہاں پر ہیں غیر ملکیوں میں.
نقوی صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جو آپ نے ان کے بڑوں کا نام لیا, ان کے بڑے تو میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کے قائد ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ان کے صدر ہیں, کیا آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ اس ساری جو لشکر جنگی کی طرف سے کاروائیاں کی جاتی ہیں تو ان کا کوئی اس میں عمل دخل ہے؟
اگر وہ نہیں ہیں, یہ دونوں بھائی شریف برادران اگر اس کے اندر انوالو نہیں ہیں اور ان کی پارٹی اگر انوالو نہیں ہے, ان کا دامن اگر پاک ہے, تو سب سے پہلے قدم پر رانا ثنا کو اپنی پارٹی سے جدا کریں. رانا ثنا کے جو اندرونی پردہ اور در پردہ روابط ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, اس کو برملا کریں اور اس پر کیس چلائیں, اس کو کورٹ میں لے جائیں اور تفتیش کریں کہ رانا ثنا کا ان سارے کاروائیوں میں کتنا دخل ہے. اگر شریف برادران اس میں انوالو نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو منزہ سمجھتے ہیں اور پنجاب حکومت اس میں شامل نہیں ہے, تو پنجاب حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر اگر جعلی ڈگری پر وہ اپنا بندہ نکال سکتے ہیں, تو دہشت گردی کی حمایت پر وہ بندہ اپنا نہیں نکال سکتے پارٹی سے, اور اس کو نہیں اس کو محاسبہ کر سکتے.
علامہ صاحب, ایک چیز یہاں پر پائی جاتی ہے, جس طرح کے گزشتہ محرم الحرام میں جہاں سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا, اور تقریباً 7 کے قریب جو ہے سیکیورٹی حصار بنائے گئے تھے, اس مرتبہ بھی جو مختلف آراء آتی ہیں, ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی جو ہے فل پروف تھی, اس طرح رانا ثنا اللہ صاحب کہتے ہیں سیکیورٹی فل پروف تھی, لیکن ڈی سی او صاحب اور جو اپنا دوسرے لوگ ہیں انتظامیہ کے, وہ سیکیورٹی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی برادری کس طرح سے اس کو دیکھتی کہ واقعی سیکیورٹی کا کوئی لحاظ ہے؟
قطرم سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے, اگر ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا اور یہ بہت دور پیش آتا. آپ اگر کاروائی کی جگہ دیکھیں اور جہاں پروگرام مرکزی جلوس تھا, کاروائی اور اس کے اندر جو فاصلہ دیکھیں, تو اسی سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک سمجھدار آدمی کو, عقل مند کو, کہ سیکیورٹی اتنی نزدیک گیٹ بنانا اور اتنی نزدیک چیک پوسٹ بنانا کہ جہاں سے چند میٹر کا فاصلہ, اتنی کیجویلٹیز اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ بہت نزدیک تھا وہ چیک پوسٹ کا جہاں پر اس کو داخل ہونا تھا اندر. اگر یہی کچھ فاصلے پر ہوتا جیسا محرم میں ہوتا ہے یا جیسا دیگر جلوسوں میں ہوتا ہے, اگر سیکورٹی کے انتظامات اس طرح سے ہوتے کہ یہاں سے 1 کلومیٹر دور پر لوگوں کو چیک کر کے اندر آنے دیا جاتا, اگر بلاسٹ بھی ہوتا تو وہاں پر بلاسٹ ہوتا اور اتنی کیجویلٹیز نہ ہوتی جتنی اندر آ کر اس نے بلاسٹ کیا ہے. قطعاً سیکورٹی کے انتظامات غیر تسلی بخش تھے, اور صرف یوں نہیں کہ پنجاب حکومت ہی اس موقع میں انوالو ہے, بلکہ رحمان ملک کے بیانات اگر ہم سنیں تو رانا ثنا اور رحمان ملک ایک بولی بولتے ہیں, دونوں دو پارٹیوں سے الگ سے تعلق ہے لیکن بات دونوں کی ایک ہے, اور ان کے ساتھ مجیب شامی کی بات اگر شامل کر لیں, جو اسپوک مین ہے ایجنسیوں کا مجیب شامی, وہ بھی جو بات کرتا ہے وہ ٹیلی کریں اگر اس کے ساتھ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلان تھا پہلے سے کہ ہم جلوسوں کو ناامن کریں, ہم موقع دیں دہشت گردوں کو جن کی خود سرپرستی کر رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ دیں اور اس بہانے سے ان جلوسوں کو روکیں. جو کیونکہ یہ آج انہوں نے باتیں یہ شروع کر دی ہیں کہ اگر یہ جلوس نہ ہوتے تو دہشت گردی نہ ہوتی, تو اگر مسجدیں نہ ہوتی, اگر جمعے نہ ہوتے, داتا دربار ہی نہ ہوتا, داتا دربار پر اگر سیکورٹی کرنی ہے, داتا دربار پر اگر دہشت گردی روکنی ہے, داتا دربار کو اکھاڑ دیں, یہ کیا بات ہے جو یہ کرتے ہیں؟
علامہ صاحب, ایک چیز کو آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ جو اپنا جو سوسائڈ اٹیک ہوئے ہیں وہ اپنے پوزیشن پر نہیں ہو سکے, جو ان کا ٹارگیٹ تھا پہنچ جائے, اور جہاں پر جو پولیس کی جو سیکیورٹی تھی, تو یہ آپ سمجھتے نہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ معاملہ جو ہے پھر بھی شروع ہوئے اور اس کو بچا لیا گیا؟
ایسے نہیں ہوتا, دہشت گرد کبھی بھی اسٹیج تک جانے کی کوشش نہیں کرتا. دہشت گردی کے نیٹ ورک پاکستان میں بہت ماہر ہے, وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کاروائیاں, اور اکثر کاروائیاں آپ دیکھیں گیٹ پر ہی ہوتی ہیں, ورنہ کبھی بھی وہ جا کر ایسی جگہ پر اپنا کاروائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے جہاں سے ان کو پتا ہو کہ راستے میں پکڑ لیا جائے گا, ہم ٹریس ہو جائیں گے اور ہم اپنی کاروائی نہیں کریں. ان کے لیے پہلے بتائے جاتے ہیں ٹارگیٹ, کی ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, نمبر 1 ٹارگیٹ, نمبر 2 ٹارگیٹ, نمبر 3 ٹارگیٹ. اب ممکن ہے یہ نمبر 2 ہو, نمبر 1 نہ ہو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے پلان میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے 28 شہداء ہمیں ہمارے ہاتھوں پہ چھوڑے ہیں, 250 کے قریب زخمی ہیں, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاروائی وہ نہیں کر سکا. اگر یہ کاروائی ناکام ہوگی تو پھر آپ کا مطلب 2800 شہید ہونے چاہیے تھے, پھر ہماری تسلی ہوتی کہ آپ وہ پلان اس کو ناکام کروائی.
قانون اور
انتظامی
فرمایا
کہ جو ایجنسی ادارے ہیں ہمارے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل ٹارگیٹ ان کا اچیو نہیں کر سکے وہ, اور اس
کے وہ تو دیکھیں نا اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے. آپ اگر دیکھیں رانا ثنا ہے یا رحمان ملک ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کس پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے, انہوں نے آج تک اجازت نہیں دی اور سب کام ان کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے. वो तो अपनी नाएलियां नाकामियां छुपाने के लिए पर्दा डालते हैं, और मीडिया का ये फरीजा है कि हुक्मरान जब अपनी नाकामियों और नाएलियों पर पर्दा डालते हैं, मीडिया इस पर्दे को उतारे, इस निकाब को उतारे और पब्लिक को तहफ्फुज़ दे, मीडिया लोगों को सही हालात से आगाह करे कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त नहते हो चुके हैं, वो खास बरेलवी मसलक हो, आशिया मसलक हो या कोई भी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर हो, वो अपने आप को इस वक्त गैर महसूस कर रही है। अहले सुन्नत अपने आप को मुकम्मल तौर पर गैर महसूस कर रहे हैं, गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, और अकलियतें भी अपने आप को इस मुल्क के अंदर गैर महफूज तस्वर कर रही हैं। और हुक्मरान अगर ये कहते हैं हमने ये किया था, हमने वो किया था, आपने देख लिया कराची के वाकया में इनके पास दो कदम पे बम पड़ा हुआ, कुत्ता लेकर गए बम को सुनने के लिए, वो नहीं कर सका, इतने इनके इंतजाम हैं। और कराची पुलिस अफसर को जो डिस्पोजल का था उनका महकमे का आदमी, उसको उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाल दिया कि उसने कहा कि हमारे पास तो ऐसे दकियानूस के इंस्ट्रूमेंट है, इनके जरिए से हम कोई बम डिस्पोज नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से कह सकते हैं,
ये तो प्रॉब्लम रहे हैं और ये आगे कोशिश है कि अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो, हमारी इंतजामिया अपने जो इक्विपमेंट है उसको बेहतर तौर पर कर सके। लेकिन आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे अब आपका लाहे अमल क्या है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? आगे भी रमजान मुबारक का दिन है और 27वें रमजान मुबारक की एक बड़ी इज्तिमा जो है वो होगा, और उसके बाद फिर ईद उल फितर है, वो उसका एक इज्तिमा होगा, इस हवाले से आप इसको किस तरह से देखते हैं?
आगे आपका पाकिस्तान में हर चीज सुन रहे हैं कि कुछ हो सकता है, तमाम मुसलमानों को खतरा दरपेश हो सकता है, 27 रमजान मुबारक को सबको खतरा दरपेश हो सकता है, सारे मुसलमान खतरे के बारज में हैं। और ये कहना कि हुकूमत फुल प्रूफ इंतजाम करे, हुकूमत नाअहल है, हुकूमत के पास में नहीं है और मुखलिस भी नहीं है, चाहती भी नहीं है, इसका इरादा भी नहीं है, इसके लिए पब्लिक को खुद करना चाहिए इंतजाम, अपने सिक्योरिटी इंतजाम करने चाहिए और भरोसा ना करें हुकूमती इंतजाम पर, अपने आप को महफूज बनाने के लिए होशियारी अपने अंदर पैदा करें। हमारी आवाम के अंदर अभी इतनी 20 साल पिटने के बाद और मुल्क जलने के बाद भी अभी वो शऊर पैदा नहीं हुआ हिफाजत का और अपने दिफा का जो होना चाहिए था, अगर हमारे आवाम कुछ थोड़ा बहुत समझ के और अपनी हिफाजत का खुद से कुछ इंतजाम करें, यही चेक पोस्टें हुकूमत पे ना छोड़ देते पुलिस पर, अगर खुद दूर इंतजामिया जो थी जुलूस की अगर कर लेती तो बहुत सारे
एक तरफ आपकी जमात भी कहती है कि इसके पीछे जो है पंजाब हुकूमत का अमल है, उनका हाथ है कहीं ना कहीं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पंजाब हुकूमत, तो एक तरफ दूसरी तरफ आपके कायदे जो हैं उनसे एहतजाजी तौर पर क्या जो है वो डिमांड करना चाहेंगे कि उनको क्या चाहिए?
ये एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में सियासतदान या सियासी लीडर आपस में ही टेलीफोन करके मुज़ाकरात करके एक दूसरे को तसल्लियां देके वाकयात को गोलमोल कर देते हैं, कार्रवाई अदालत तक भी नहीं जाती और कोई अमली उसके लिए इकदाम भी नहीं होता, कोई एहतजाज भी नहीं होता, एक लीडर दूसरे लीडर को फोन कर देता है, वो इसका जवाब देता है, शुक्रिया अदा कर देता है और इससे ये मसला खटाई में पड़ जाता है। आज तक किसी भी मुजरिम को इतनी पाकिस्तान में वाकयात हुए, दादा दरबार का मुजरिम अभी तक सजा नहीं मिली उसको, और नश्तर पार के मुजरिम को अभी तक सजा नहीं मिली पाकिस्तान के अंदर, मोमिनपुरा के मुजरिमों को अभी तक नहीं मिली, बल्कि बस ऐसे मुजरिमीन जो जिनके बारे में यकीन था उन्होंने इतराफ़ किया कि हम इस कार्रवाई में शामिल थे, बल्कि जजों के सामने कहते हैं फिर हम छोड़ोगे, बाहर जाके फिर करेंगे ये कार्रवाइयाँ, ऑन द रिकॉर्ड उनकी बातें हैं, ये उनको फिर छोड़ देते हैं। हमारी अदालत भी इसमें बराबर की शरीक है, अदालती हमारा सिस्टम, चीफ जस्टिस हमारा, वो छोटी छोटी बातों पर नॉन इश्यूज में खुद नोटिस लेता है, वो अस्खुद नोटिस लेता है, लेकिन इतने बड़े वाकयात में वो कभी उसने तसलियत तक भी नहीं की, अफसोस का इजहार तक भी नहीं किया। इसी तरह वकला हैं, वकला नॉन इश्यूज पर इतना शोर मचाते हैं लेकिन इस वाक्य में वो जरा बराबर शरीक नहीं होते, कोई बात नहीं करते। इसी तरह सियासी लीडर हैं, ये आपस में ही एक जगह बैठकर एक दूसरे को तसलियां दे लेते हैं, और आवाम की तर्जमानी करने वाले अगर आवाम की तर्जमानी करने वाले हों, आए आवाम को रोड पर लाएं, आवाम के मुश्किलात सुने और उनके लिए कोई हिफाजत का इंतजाम करें, बचाएं और किसी को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। जब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाते उस वक्त तक हम नहीं कह सकते टेलीफोन से मसला हल हो।
सवाल है कि जो क्या हुआ और इसमें अमन मान कायम करने के लिए आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ और खसूस अहले तशी जो हैं उनके साथ क्या अपील करना चाहेंगे? अमन मान
हम इनसे तकाजा करते हैं, और है शिया कौम ने अभी तक साबित किया 20 सालों में जो पुरअमन कौम है, अगर कराची जैसे वाकयात में कुछ हुआ है तो उसमें शिया बिल्कुल दखील नहीं थे, उसके अंदर इन्हीं सियासी पार्टियों का आपस में जो मुश्किल थी वो तस्वीरें साफ कर रहे थे एक दूसरे के साथ, उसमें भी शिया इन्वॉल्व नहीं थी। अगरचे शियों पर डालने की कोशिश की, लेकिन बाद में मीडिया से भी और दूसरी सोर्सेज से भी पता चल गया कि शिया इन्वॉल्व नहीं थे। शिया ने आज तक अमन का मुजाहरा किया है और पुरअमन है ये कौम और रहेगी पुरअमन। यानी हमारा मकतब दीन हमें इजाजत नहीं देता कि हम मुल्की अमवाल को नुकसान पहुंचाएं, हम बेगुनाह लोगों के अमवाल को नुकसान पहुंचाएं, हम अमवाल उमूमी या गवर्नमेंट को या दुकानों को नुकसान पहुंचाएं, और नहीं किया उन्होंने। आपने देख लिया कि आज का जुलूस कितना पुरअमन जुलूस था और कितना एहतजाज, सिर्फ इन्होंने अपनी आजादारी की है और आखिर में आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने एहसास का इजहार किया है। ये काम हम करते रहेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि हम हमारे पुरअमन रहने से पाकिस्तान पुरअमन नहीं होगा जब तक दहशतगर्द पुरअमन नहीं हो जाते, जब तक हुकूमत इन पर काबू नहीं पा लेती और जब तक सियासी पार्टियां इस मसले में संजीदगी से नहीं सोच लेती। इस वक्त पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, 1.5 करोड़ अवाम हमारे बेघर हो चुके हैं। हमें उन सब की मदद की जरूरत है, लेकिन उन सब से तवज्जो हटाने के लिए और सैलाब का फंड हड़प करने के लिए, खाने के लिए मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हर दफा ये करप्ट हुकूमतें अपनी किसी जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अवाम का बेगुनाह खून बहाती हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की ये साजिश है, शिया सुन्नी को लड़ाने की ये आपस में साजिश है। कतअन शिया सुन्नी में ये जंग नहीं है, शिया सुन्नी आपस में भाई हैं। ये कातिल ग्रुप जिनकी सरपरस्तियां हुकूमती इदारे और दूसरे कर रहे हैं, ये न शिया है न सुन्नी है न इंसान है। ये रोजादारों को कत्ल करना, दाता दरबार के जायरों को कत्ल करना और सुन्नी मुसलमानों को शिया मुसलमानों को कत्ल करना, ये इंसानियत भी नहीं है, इसको तो कोई मजहब का नाम नहीं दे सकता है। लिहाजा शिया इस तरफ मुतवज्जे है और कभी भी शिया ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे पता चलता हो कि शिया के अंदर शऊर मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्होंने शऊर का सबूत दिया।